مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا زدنا علما. سیرت النبی میں ہم کون سے والے سال میں ہیں؟ بتا سکتا ہے جی؟ بتائیے. نو ہجری کے اندر ہے، ٹھیک ہے. اور کون سا واقعہ چل رہا ہے؟ غزوہ تبوک کا واقعہ چل رہا ہے. اچھا، آخری بات ہم نے کلاس میں کیا پڑھی تھی، سنی تھی؟ حجر کا مقام آیا تھا، تو اس حجر کے مقام میں کیا کیا چیزیں ہوئی تھیں، وہ بیسکلی ہم بات کر رہے تھے اس کے اوپر. جی ہاں، وہ بات بالکل آخری بات یہ ہم نے پڑھی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت یہ بھی حکم فرمایا تھا کہ اکیلے کوئی نہ نکلے، ٹھیک ہے. تو دو صحابی جو ہے نا وہ اکیلے نکل پڑے تھے، یعنی جماعت سے ہٹ کر کے. جماعت تو تین یا تین سے زیادہ کی ہوتی ہے، تو وہ دو تھے، دو اکیلے نکل پڑے تھے. تو ان کے ساتھ پھر بہت برا معاملہ ہوا تھا. ایک کو تو ہوا نے اٹھا کر کے بہت دور پھینک دیا تھا، اور دوسرا جو ہے اس کا دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا، دم گھٹنا شروع ہو گیا تھا. لیکن دونوں کی زندگی بچ گئی، یہ لوگ بالآخر واپس پہنچ گئے مسلمانوں تک. اچھا، اس کے بعد جو ہے اگلا چھوٹا سا ایک واقعہ یہ پیش آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پہنچے، تو وہاں پہ بالکل پانی نہیں تھا، کوئی کنواں وغیرہ نہیں مل رہا تھا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے بارش برسا دی. تو بارش سے جو ہے وہ پانی کا مسئلہ اس وقت حل ہو گیا. پھر تھوڑا سا اور آگے چلے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اونٹ تھا نا، وہ گم ہو گیا، ٹھیک ہے. تو اب اونٹ کی ڈھنڈائی ہو رہی ہے، تو ایک دو جو تھا نا اس میں، یعنی عجیب معاملہ تھا کہ ویسے تو منافقین جو ہے وہ اس غزوے میں ساتھ نہیں نکلے تھے، ٹھیک ہے، لیکن ایک آدھ نکل بھی گئے تھے، ایک آدھ جو ہے وہ چلے بھی گئے تھے، ٹھیک ہے. اصول کیا بتایا تھا کہ جب یہ کہا جاتا ہے کہ ایس کے نہیں نکلے تھے، منافقین نہیں نکلے تھے، تو کسی کو وہ ایک اصول یاد ہے، للاکثر حکم الکل، اکثر کے اوپر کل کا حکم لگا دیا جاتا ہے. یعنی اکثر منافقین نہیں نکلے تھے لیکن ایک آدھ نکل بھی گئے تھے، تو وہ ایک آدھ جو ہے نا پھر وہ ایکسیپشن میں آ جائیں گے، وہ اکثر میں نہیں آئیں گے. تو اکثر چونکہ نہیں نکلے تھے، میجورٹی نہیں نکلی تھی منافقین کی، تو اس وجہ سے کہہ دیا جاتا ہے کہ منافقین نہیں نکلے تھے. مومنین سارے کے سارے نکل گئے تھے، لیکن ایون مومنین بھی سارے نہیں نکلے تھے، ایک آدھ جو ہے وہ رہ گئے تھے. تو للاکثر حکم الکل، میجورٹی کے اوپر کل کا حکم یعنی آل کا حکم لگا دیا جاتا ہے. تو یہ جو ایک آدھ منافقین تھے نا، تو انہوں نے جو ہے نا پھر بولنا شروع کر دیا کہ آپ عجیب کہ آسمان کی خبریں لے کر کے آتے ہیں کہ آسمان پر یہ ہوا اور عرش پہ یہ ہوا اور اللہ نے یہ کہا اور فرشتوں نے یہ کہا، اور ادھر دیکھو اونٹ گم ہو گیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اونٹ کدھر گم ہو گیا، صحیح ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ باتیں سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے، مجھے کسی چیز کا علم نہیں ہے سوائے اس علم کے جو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مجھے جس چیز کا علم دیا ہے نا، مجھے اسی چیز کا علم نہیں ہے، اس کے علاوہ مجھے خود سے ہر چیز کا علم نہیں حاصل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ ابھی مجھے اللہ تعالیٰ نے الہام فرما کر کے یہ بتا دیا ہے کہ میرا اونٹ جو ہے نا وہ فلانی وادی کے اندر ایک درخت کے اندر پھنسا ہوا ہے. کہ اونٹ جاتے ہیں پھر وہ دیکھ کر کے نا پھر چرنا شروع کر دیتے ہیں، درختوں کے پتے وتے کھانا شروع کر دیتے ہیں. تو اب اس اونٹ کے اوپر جو رسی لگی ہوئی تھی، اس کے گردن سے جو رسی ٹنگی ہوئی تھی نا، وہ رسی کہیں پہ جا کر کے اٹک گئی تھی. تو وہ اونٹ بیچارہ جو ہے نا وہ اس درخت کے ساتھ پھنسا ہوا کھڑا ہوا تھا، وہاں سے نکل ہی نہیں پا رہا تھا. تو جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ بات فرمائی تو صحابہ جو ہے وہ دوڑے دوڑے گئے اور وہاں سے اس اونٹ کو نکال کر کے واپس لے کر کے آ گئے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے واقعات بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کروائے ہیں. ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला ये सारा काम करवाते हैं ना, खुद से तो ये सारी चीजें नहीं हो जाती। तो अब इसके अंदर हमारे लिए वही रिमाइंडर है कि नबी अलैहिस्सलाम भी आलमुल गैब नहीं है कि हर चीज का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म हो जाए। तो फिर हम, आप या आज के कोई पीर साहब हो या मौलवी साहब हो या जो भी साहब हो, वो कैसे आलमुल गैब हो सकते हैं? ठीक है, तो जो भी इस किस्म का अकीदा रखते हैं किसी भी इंसान के बारे में, वो बिल्कुल गलत सोच रखते हैं। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद आ गई जो कि मेरा इरादा था क्लास में सबसे पहले पूछने का आपसे, कि आखिरी क्लास में, लास्ट क्लास के अंदर हमने अकीदे और ईमान के ऊपर क्या बात करी थी? तो कौन एक्सप्लेन करेगा उस वाली बात को? जी, अब आपने हाथ खड़ा कर दिया, अब आप फंस गए, अब आपको ही करना पड़ेगा। जी साहब, ईमान क्या होता
आपने
है? ईमान क्या होता है, अकीदा क्या होता है, क्या कहा था?
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
नहीं, ये तो हमने नहीं बताया था।
आपको
अच्छा, ठीक है। यहाँ पे ऑनलाइन भी एक दो जवाब आए हैं। अकीदे का मतलब है कि इम्पोर्टेंट बातें। अच्छा, और यहाँ पे है कि हाँ, इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। पहली बात जो बताई थी वो ये बताई थी, चले, या इनका जवाब तो खैर लिखा हुआ आ गया ना रिकॉर्ड पे। अब यहाँ पे कोई बताए, आप नहीं, नहीं ये नहीं, ये बात की बात है, आप बता रहे हैं। और जी दाऊद,
दुनिया बकरी
जी, सबसे पहली बात ही बताई थी कि हमारे दीन की बुनियाद, फाउंडेशन, वो आमाल के ऊपर नहीं है, नमाज के ऊपर नहीं है, जकात के ऊपर नहीं है, हज के ऊपर नहीं है, सदक़े खैरात के ऊपर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है ना, बुनियाद उसके ऊपर नहीं है। बुनियाद जो है वो, जैसे इन्होंने भी लिखा, ईमान के ऊपर है, ईमान के ऊपर। ठीक है, और ईमान क्या होता है? व्हाट इज ईमान? जी मुस्तफा,
जो कुछ करना पड़े
नहीं,
उसके
सही सही जवाब दें, क्लियर, जिसमें इस किस्म की कंफ्यूजन ना हो, क्लियर जवाब दें, बिल्कुल। जी, ईमान क्या है? ईमान की तारीफ मुझे चाहिए।
साथ
नहीं, ईमान की तारीफ बताएं। जी
जो जो कुछ दिया
समझ आया ना, है कि बिदत डालनी जरूरी है इसके अंदर? सीधी सी बात है, जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अब्दुल्ला आप भी यही कह रहे थे, जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है ना, उसका इकरार करना जुबान से और दिल से उसकी तस्दीक करना, यानी उसको दिल से मान लेना, ये है ईमान। बस, किसको याद रहेगा? पिछली दफा भी बताया था, फिर आप लोगों को याद तो नहीं था? ठीक है, वही क्या है, ईमान वाले हैं, मोमिन हैं कि कुछ और हैं? तो ईमान की तारीफ ही नहीं पता, फिर कैसे मोमिन हैं हम लोग? ठीक है, तो भाई ईमान की तारीफ मत भूल जाए यार, कम से कम सब कुछ ही ऊपर ऊपर कर रहे हैं, अंदर से ईमान की तारीफ ही नहीं पता। ईमान की तारीफ क्या है? कि जो कुछ नबी अलैहिस्सलाम लेकर के आए, उसकी तस्दीक करना, उसका इकरार करना, ठीक है ना, ये ईमान है। अब इसके बाद सवाल क्या होता है? व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट शुड कम इन आवर माइंड? ठीक है जी, जो कि क्लास, आखिरी क्लास में बताया था। जी आप ही बता दें, अफान। अंकल से पूछना पड़ जाएगा अगर आप लोग नहीं बताएंगे। ऑनलाइन जी, जब ईमान की तारीफ पता चल गई तो अब हमारा क्या सवाल होना चाहिए? ईमान की तारीफ दोहराएं पहले आप साहब।
तो जो कुछ भी आप सबसे लेकर आए उस पे
ठीक है जी, बिल्कुल सही बात है, जो कुछ भी नबी अलैहिस्सलाम ने बताया, लेकर आए का मतलब यही कि जो कुछ उन्होंने बताया उस पर एतमाद करना, उसका इकरार करना, उसकी तस्दीक करना, ये ईमान की तारीफ है। अब इसके बाद क्या सवाल आना चाहिए जो आप बता रहे थे? क्या
क्या कुछ
कुछ लेकर के आए नबी अलैहिस्सलाम? सवाल ये होना चाहिए कि जो आपने जो कुछ कहा है, तो व्हाट इज दिस जो कुछ, जो कुछ क्या है, व्हाट कुछ, ठीक है? अंग्रेजी, उर्दू, इंग्लू, हर चीज में अभी बाहर से हमारे थे हमने जायद भाई हुआ कि आपके नेबर्स ने अपनी बर्ड का पिंजरा बाहर रखा हुआ है ये हमारी हमारी लैंग्वेज है, ठीक है? मैं अपनी बात कर रहा हूँ, जायद की बात नहीं कर रहा, मैंने ये कहा, ठीक है? अंग्रेजी, उर्दू तो जो कुछ, व्हाट कुछ, सही है? क्या है ये जो कुछ, क्या लेकर के आए नबी अलैहिस्सलाम, ये सवाल, ठीक है? तो अब जब इस सवाल का जवाब दिया जाएगा, तो वो चीज क्या कहलाती है जो इस सवाल के जवाब में बताई जाती है? क्या कुछ लेकर के आए नबी अलैहिस्सलाम, क्या कुछ बताया नबी अलैहिस्सलाम ने, जी क्या कहा जाता है उस चीज को? अब्दुल्ला बताएंगे, अकीदा, ठीक है? अकीदा कहा जाता है उसको, और अकीदे की जमा क्या है? अकाइद, ठीक है ना? यानी नबी अलैहिस्सलाम जो कुछ लेकर के आए, मतलब जो कुछ बताए नबी अलैहिस्सलाम ने, उन चीजों को अकायद कहा जाता है, उनको अकायद कहा जाता है, ठीक है? तो हमारे दीन की बुनियाद ईमान के ऊपर है, और ईमान है क्या? ईमान जो है वो अकायद का नाम है, ठीक है? तो अब अगर अकायद हमारे ठीक होंगे तो हमारा ईमान होगा, अगर हमारे अकायद ठीक नहीं होंगे तो हमारा ईमान नहीं होगा। चाहे आगे फिल इन द ब्लैंक्स, चाहे
आप जितने अच्छे काम
आप
जितने अच्छे काम जो
जितने अच्छे काम कर लें, ठीक है, बिल्कुल, और चाहे
भी आम
जो भी आप अमाल कर लें, और बोलें चाहे, सही है,
करना
आप कितना भी सदका खैरात कर लें, और बोलें चाहे चाहे जितनी भी आप नमाजें पढ़ लें, और बोलें चाहे, रेहान है, बहुत सारी नेकियां कर लें, और बोलें चाहे जितने भी रोजे रख लें, जी सर, चाहे जितने भी हज उमरे कर लें, और चाहे आजकल आजकल के हिसाब से हालात है, हाजरा के हिसाब से जवाब दें, चाहे टक्करी
नहीं
मारने, तो नमाज में आ गया वो,
नहीं
फलस्तीन की मदद कर लें जाकर के, चाहे आप गजा के लिए जो है वो प्रोटेस्ट कर लें, ठीक है ना? चाहे आप कितने भी जो है वो नाते पढ़ लें, सही है? चाहे आप जितने भी जो है वो नमाजें पढ़ लें, साथ मिल करके पढ़ें, जैसे भी पढ़ें, नहीं, आजकल जो है ना वो गर्ल्स एंड बॉयज साथ में खड़े होकर के नमाजें पढ़ रहे हैं, ठीक है, गजा की वजह से पढ़ रहे हैं, ठीक है? लेकिन बिल्कुल इसकी कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह ताला के नजदीक इन नमाजों की कोई हैसियत नहीं है, अल्लाह ताला के नजदीक इन प्रोटेस्ट की कोई हैसियत नहीं है, ठीक है ना? अगर आपका अकीदा जो है वो खराब हो जाए, तो फिर हाँ, अगर अकीदा सही रहे तो फिर उसके बाद दूसरी चीज आती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीके के मुताबिक आप काम करें, ठीक है ना? अकीदे के बाद आता है तरीका, सुन्नत तरीका होना चाहिए, तब अल्लाह ताला जो है वो कबूल करते हैं, ठीक है? तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आखिरी क्लास में थी जो कि आज रिवाइज हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद नबी अलैहि सलाम जो है वो मजीद आगे बढ़े, एक तो वो ऊँटनी वाला वाकया हो गया ना, ऊँटनी मिल गई, बल्कि ऊँट जो था वो मिल गया, फिर वो आगे बढ़े, उसके बाद क्या हुआ कि आप बिलाखिर तबूक के मकाम के ऊपर पहुंच गए। तबूक का मकाम जो है वो मदीना मुनव्वरा से किस डायरेक्शन में था, किसी को याद है?
नॉर्थ
नॉर्थ
वेस्ट
वेस्ट, ठीक है? यानी मदीना मुनव्वरा से ऐसे नॉर्थ जाएंगे तो वेस्ट जो है वो यहाँ पर है, तो गोया कि ऐसे था तबूक। तो तबूक और मदीना मुनव्वरा के दरमियान में वो हिजर का इलाका पड़ा था, जहां पे कौम सालेह के ऊपर अजाब आया था, ठीक है? तो वो दरमियान में पड़ा था, फिर मजीद ऊपर चले गए तो तबूक के इलाके में पहुंच गए, ठीक है? तबूक से आप मजीद आगे चले जाए ना, तो फिर वो आजकल जो बड़ा मशहूर नियोम का इलाका आता है ना, फिर वो बॉर्डर आ जाता है सऊदी अरब का, उसके साथ जॉर्डन के साथ और इसराइल के साथ और इजिप्ट के साथ, ये तीन कंट्रीज का एक बॉर्डर मिलता है वहां पे जाके, वहां पे नियोम बन रहा है आजकल। तो खैर, तबूक उससे पहले है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक पहुंच गए, और वहां पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले से फरमा दिया था पहुंचने से पहले ही कि चाश्त के वक्त ना तुम लोग तबूक के मकाम पे पहुंचोगे, वहां पर पानी का एक चश्मा होगा, एक वाटर स्ट्रीम होगी, ठीक है? लेकिन उस चश्मे के अंदर जो है ना वो पानी नहीं होगा, बल्कि कतरा कतरा पानी जो है ना वो उसमें से गोया के स्प्राउट कर रहा होगा, बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा पानी स्प्राउट कर रहा होगा। अगर फरमाया कि कोई भी ना उस चश्मे से पानी नहीं ले, यानी वो कतरे जो निकल रहे हैं ना वो भी नहीं ले, बल्कि मुझे वहां पे पहुंचने दे। जब आप वहां पे पहुंचे ना, तो आप सर फरमाया कि एक बर्तन लो और उसके अंदर वो जो ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं ना, ड्रॉप्स जो निकल रहे हैं, उन ड्रॉप्स को जो है वो जमा कर लो। तो साहबा ने ना फिर बड़ी देर तक मुश्किल से उन ड्रॉप्स को एक बर्तन के अंदर किसी तरीके से जमा कर लिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पानी से अपना हाथ और मुंह धो करके उस पानी को वापस बर्तन के अंदर ही गिरा दिया। ऐसे धोते हैं ना, और बर्तन नीचे रखा होता है तो पानी जो है वो नीचे ही गिरता है। तो उस पानी को ना फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस चश्मे के अंदर डाल दो, ठीक है ना, वो जहां से वो पानी निकल रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बॉडी से टच हुआ हुआ पानी वहां पे जब डाला गया ना, तो वहां से एक फव्वारा निकला बाहर, ठीक है ना, एक फव्वारा समझते हैं ना, बिल्कुल एक स्प्राउट आउट, बिल्कुल एक शोर के साथ जो है वो पानी निकला। और उस पानी से फिर सहाबा कराम ने आराम से जो है वो वुजू बनाना और पानी पीना, सब अपनी जरूरियात जो है वो पूरी कर ली। नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त हजरत मुआज बिन जबल रज़ियल्लाहु को मुखातब होकर के फरमाया कि ए मुआज, अगर तुम जिंदा रहे ना उस वक्त तक, तो देखना तुम देखोगे कि ये पूरा इलाका जो है ना वो बागात से भर जाएगा, यानी ये इतना पानी है और ये चलता रहेगा कि पूरी जमीन जो है वो सरसब्ज हो जाएगी और उसके अंदर बागात उग जाएंगे, सरसब्ज और शादाब हो जाएगी ये जमीन। तो इब्ने इसहाक की जो जो बहुत बड़े एक हमारे हिस्टोरियन है, उन्होंने बाद में कई सालों के बाद किताब लिखी और उसमें लिखा कि ये चश्मा आज भी जारी है और वो पूरा इलाका जो है वो सरसब्ज हो चुका है, ठीक है। तो ये एक मुआजा नबी अलैहिस्सलाम का वहां पर भी जाहिर हुआ। इसके बाद नबी अलैहिस्सलाम वहां पर क़याम फरमा लिया। 20 दिन तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर अपने पूरे लश्कर के साथ, 30,000 मुसलमान थे ना उस लश्कर में, तो वहां पे क्याम फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और वेट करते रहे कि काफिरों की आर्मी जो कि 40,000 स्ट्रॉन्ग आर्मी थी वो आएगी, लेकिन कोई भी नहीं आया, ठीक है। तो उन लोगों ने ना, आपको पता है कि जो उनका बादशाह था हेराक्यूलस, हेराकल जो था, सीजर या काइजर, तो उसने इरादा तो कर लिया था, लेकिन उसका मामला क्या था कि वो नबी अलैहिस्सलाम से बहुत ज्यादा मरऊब भी हुआ हुआ था। वो तो ईमान लेकर के आ जाता अगर दुनिया की मोहब्बत उसके रास्ते में रुकावट ना बन जाती, तो वो तो पक्का ईमान, उसने ऐसी ऐसी बातें कही नबी अलैहिस्सलाम की शान में, लेकिन बस वो अपनी बादशाहत नहीं छोड़ना चाहता था, वरना उसका दिल तो मरूब हो चुका था ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो उसने जो है ना जब ये सब देखा सुना, तो उसने कहा भाई ये अल्लाह के नबी हैं, इनसे तो मैं मुकाबला नहीं कर सकता, तो ही डिड नॉट इवन शो अप, आए ही नहीं वो ना। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 दिन तक वहां पे रहे, रुके, और फिर उसके बाद वापसी का इरादा किया। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वहां पे पहुंचना, इतना मेहनत करना, इतने लोगों को लेकर के आना, ये बेफायदा नहीं हुआ, बल्कि इसका फायदा ये हुआ कि आसपास के इलाके के जो लोग थे ना, वो बहुत उनके ऊपर गहरा असर पड़ा, हत्ता के शाम के एरिया तक, उसके काफी आगे जाकर के शाम की बाउंड्री स्टार्ट होती है, ठीक है, तो वहां तक भी जो है ना लोगों के ऊपर एक रोब पड़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, मुसलमानों का, और लोग बड़ी बड़ी तादाद में पूरे पूरे कबीले आकर के फिर मुसलमान हुए, ठीक है। तो अहम कबीले थे अहले जुर्बा, अजरा और ईला वगैरह, इन्होंने आकर के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कुछ ने जो है वो इस्लाम कबूल किया और कुछ ने जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुलह कर ली, यानी सुलह करने का मतलब, पीस ट्रीटी करने का मतलब ये होता है कि वो मुसलमान तो नहीं हुए, वो रहे तो काफिर ही, लेकिन उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको इतना जिजिया देंगे, इतना टैक्स देंगे, उसके बदले में सारे मुसलमान जो हैं वो हमारी हिफाजत करेंगे, हमें मारेंगे नहीं, और हमारे इवन दुश्मनों से भी हमारी हिफाजत करेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं सुलह करना, पीस पीस एग्रीमेंट कर लेना। अच्छा, वहां पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ठहरे हुए थे, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु को 420, ये 420 का जो एक मजाक बना हुआ है हमारे हमारे ट्रेडिशन में, 420 ही करना, ठीक है, तो इसको मैं, यानी ये तो लोगों ने बना दिया किसी वजह से, पता नहीं किस किस वजह से बनाया, लेकिन नबी अलैहि सल्लम ने इस मौके के ऊपर एग्जैक्टली 420 सिपाहियों को हजरत खालिद बिन वलीद के साथ भेजा, दौमतुल जुंदल एक जगह है उसके हाकिम के पास, उसका नाम था अकीदर, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खालिद बिन वलीद को फरमाया कि तुम जब वहां पहुंचोगे ना, तो तुम अकीदर को शिकार खेलते हुए पाओगे, यानी वो जानवरों को जो है ना वो मारने की, पकड़ने की कोशिश कर रहा होगा, शिकार खेलना जिसको कहते हैं हंटिंग, तो उसको जो है ना तुम मेरे पास लेकर के आना, और अगर वो आने से इनकार कर देना तो उसको कत्ल कर देना। वरना तुम मेरे पास लेकर के आना। तो खालिद बिन वलीद जब रज़ियल्लाहु तआला जब वहां पहुंचे ना, तो उस वक्त वो रात का वक्त हो चुका था और बड़ी चांदनी रात थी, ठीक है, जैसे 14वीं का चांद होता है, तो उस चांद की बड़ी अच्छी खासी रोशनी होती है। तो उस वक्त अकीदर जो है वो अपनी बीवी के साथ ना अपने किले की वॉल के ऊपर, कोई फसील जगह उसने बनाई हुई थी फसील के ऊपर, वहां पे बैठा हुआ था और गाना वाना सुन रहा था, ठीक है। इतने में एक जिसको कहते हैं लाल गाय कहते हैं, नील गाय कहते हैं, सही है, तो वो उसने आकर के जो है ना वो दीवार के ऊपर टक्कर मारी। तो इसको जैसे ही अंदाजा हुआ कि अच्छा ये तो नील गाय है, तो ये तो बड़ा शिकार का शौकीन था, ये फौरन जो है वो नीचे उतरा, अपने घोड़े के ऊपर बैठा और अपने साथियों को लिया जिसमें उसका भाई भी शामिल था, और उस नील गाय का ना पीछा करना शुरू किया कि उसको हम शिकार करके लेकर के आते हैं। नील गाय का शिकार करना बड़ी, उसका गोश्त भी बहुत जबरदस्त होता है, बहुत टेस्टी होता है, और उसका शिकार करना बड़ा, यानी बड़ा शिकार समझा जाता है। तो ये लोग जब भागे ना, तो सामने इनको जो है वो खालिद बिन वलीद अपने सिपाहियों के साथ मिले, तो उस वक्त जो है ना इसके भाई ने तो खालिद बिन वलीद का मुकाबला करने की कोशिश करी, तो उसको तो खड़का दिया गया, भाई तो वहीं पे कत्ल हो गया। और इसको जो है ना वो गिरफ्तार कर लिया, और खालिद बिन वलीद ने फरमाया कि भाई अगर तुम मेरे साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलने के लिए तैयार हो तो ठीक है, वरना तुम भी जाओगे। तो ये तैयार हो गया और आप के पास आया, और इसने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सुलह कर ली। काफी सारे 2,000 ऊंट और 800 घोड़े और 400 जिरहें और 400 नेजे, ये कीमत थी सुलह की, यानी ये उसने टैक्स के तौर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया और आप के साथ सुलह कर ली, ठीक है। तो ये चंद छोटे छोटे इवेंट्स हुए तबूक के मौके के ऊपर, और इसके अलावा कोई चीज नहीं हुई। अब 20 दिन कयाम करने के बाद अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा की तरफ वापस रवाना हुए। तो अभी रास्ते में ही एक जगह थी जिसका नाम था जी आवान। जी आवान ये मदीना मुनव्वरा से उस जमाने के हिसाब से 1 घंटे के रास्ते पर था, यानी बहुत ही करीब था, क्योंकि अब तो 1 घंटा बहुत तेजी से कवर हो जाता है ना, उस वक्त तो लोग ऊंटों के ऊपर, घोड़ों के ऊपर, तो फिर भी काफी करीब रास्ता, यानी काफी करीब रास्ता था मदीना मुनव्वरा। तो वहां पे जब पहुंच गए ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो सहाबी हजरत मालिक बिन दखशम और मान बिन उदी रजी अल्लाह तआला अन्हुम को एक टास्क दे के भेजा। वो टास्क क्या था? एक मस्जिद को गिराने का टास्क और जलाने का टास्क, ठीक है, मस्जिद को। जी अच्छा, अभी हमने सवाल तो नहीं किया। मस्जिद का क्या क्या हिस्ट्री थी कि मदीना मुनव्वरा में जो मुनाफिकीन थे तो वो ना बुरी तरीके से शिकस्त खा चुके थे, यहूदियों के साथ भी बहुत बुरा मामला हो चुका था, वो हर जगह से, यानी हर गजवे में उनको शिकस्त हुई थी, बहुत सो को तो बाहर ही निकाल दिया गया था, खैबर तक यहूदियों को बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। खैबर एक बहुत बड़ा उनका किला था, बहुत सारे किले थे बल्कि खैबर के अंदर, वहां पर भी उनको शिकस्त हो गई थी। तो अब जो है ना उन्होंने ये फैसला किया था कि जी हम मुसलमानों को जो है ना वो फोर्सफुली तो हम डिफीट नहीं कर सकते, ठीक है, इतनी बड़ी इनकी ताकत हो चुकी है और हम जो है वो उनके मुकाबले में कमजोर हैं, तो अब ना हम इनके साथ जो है वो अंदरूनी तौर पर उनको अपनी साजिशों के जरिए से शिकस्त देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमेशा ऐसे ही होता है कि जब कोई बड़ी ताकत होती है ना, तो वो तो फोर्स के जरिए से दूसरों को शिकस्त देती है, दूसरों के ऊपर कब्जा करती है, लेकिन उसके दुश्मन अगर उसके बराबर में इक्वली स्ट्रांग ना हो बल्कि कमजोर हो ना, तो फिर दुश्मन फिर क्या तरीका इख्तियार करता है? वो फिर या तो गुरेला वॉरफेयर का तरीका इस्तेमाल करता है, उसको गुरेला वॉरफेयर कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है?
अच्छा
गुरेला वॉरफेयर का मतलब क्या होता है ये तो कुछ है, छापा बरदार, छापा बरदार कहते हैं, छाता बरदार, हाँ छापा नहीं छाता बरदार, वो पैरेट, इसके लिए भी कुछ ऐसे ही लफ्ज है गोरिल्ला वॉर है, छापा छापा बरदार, कुछ छापा छापा मारना जिसको कहते हैं ना उर्दू में, तो उस तरह किसी को अगर यहाँ पता ऑनलाइन शब खून मारना तो होता है कि भाई एक सरप्राइज अटैक आपने कर दिया, इसका मतलब ये होता है
हमला
छुप छुप करके ना वो फिर बिल्कुल सामने आकर के हमला नहीं करते, ठीक है, क्योंकि सामने आएंगे तो बहुत बड़ी फोर्स सामने है, उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो अब जो है ना वो क्या करते हैं, छुप छुप करके, चुपके चुपके से ना छोटी छोटी फोर्सेस को लेकर के जाते हैं, जैसे 5 आदमी हैं, 10 आदमी हैं, और वो बस जा करके जो है ना वो एक बिल्कुल अचानक से फौजियों के ऊपर हमला करके नुकसान पहुंचा करके तेजी से वो बाहर निकल आते हैं। छापा मार, एग्जैक्टली छापा मार, वो छापे मारते हैं इस तरीके से, ठीक है, छापा मार कहते हैं। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल बड़े बड़े मुल्कों ने जब कभी किसी छोटे मुल्क के ऊपर अटैक किया ना, तो ऐसे ही होता था। आजकल अमेरिका के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, ये प्रोटेस्ट जो हैं वो पहली दफा नहीं हो रहे अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ, और पूरे यूनिवर्सिटीज के अंदर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोग जो हैं वो अपने आप को बिल्कुल ही जो है ना वो अरेस्ट के लिए पेश कर रहे हैं, ये पहली दफा नहीं हो रहा। इससे पहले भी एक दफा इससे भी ज्यादा बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो चुके हैं, वो कब हुए थे ये बात भी याद रखें, ये कोई मुसलमानों के दीन इस्लाम की खैरख्वाही में नहीं हो रहा, ये पहले भी हो चुके हैं, ठीक है। पहले कब हुए थे, जब नहीं उस वक्त कुछ भी नहीं हुआ था, कब हुए थे ये अमेरिका में, इससे भी बड़े बड़े प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ,
अभी लेटेस्ट ट्रंप ट्रंप के फेवर में था।
नहीं वो तो फेवर में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो हुए थे जब अमेरिका ने जो है ना वो एक छोटे से मुल्क के ऊपर हमला किया था, वो छोटा सा मुल्क कौन सा था,
अफगानिस्तान
वियतनाम, वियतनाम, ठीक है, उसके ऊपर जब हम, ये 1950s की बात है, ठीक है ना, जब वियतनाम के ऊपर हमला किया था ना, तो उसमें भी जो है ना वो अमेरिका के बहुत बड़ी फोर्स थी, और वियतनाम की जो फोर्सेस थी, वियतनाम में भी उन्होंने वही दो ग्रुप्स बना लिए थे, एक ग्रुप जो अमेरिका को सपोर्ट करता था, दूसरा ग्रुप जो अमेरिका के खिलाफ था, तो उस जो अमेरिका के खिलाफ जो जो था ना, उसने फिर यही तरीका इस्तेमाल किया था, छापा मार, गुरिला वॉरफेयर, और इतना उन्होंने इस तरीके से अमरीकियों को मारा था, इतने अमरीकी मरे थे फौजी उस वॉर के अंदर बेहिसाब। कैसे मारते थे, छुप करके बैठ जाते थे बिल्कुल अपने ऊपर जो है ना वो ग्रीन यानी पौधे और दरख्त के पत्ते और ये सब चढ़ा लेते थे, पता ही नहीं चलता था कि यहाँ पे दुश्मन बैठा हुआ है। अमरीकी फौजी अपने बड़े बड़े मशीन गन्स और बड़े बड़े चीजें लेकर के जा रहे हैं, एकदम से वो निकलते थे, मारते थे और उसके बाद गायब हो जाते थे। नीचे उन्होंने जो है ना वो जमीन के नीचे छुपे होते थे, और ऊपर जो है ना उन्होंने ट्रैप्स बनाए हुए होते थे, बूबी ट्रैप्स उनको कहते हैं, ठीक है। तो वो जब अमरीकी फौजी जा रहा होता था ना, वो पैर रखता था ना उस ट्रैप के ऊपर खड़क नीचे, तो फिर उसको पकड़ लेते थे, मारते थे, ऐसे ऐसे ट्रैप्स बनाए हुए होते थे। वो क्या करते थे, जो उनके दरख्त की लकड़ियां होती थी ना, बैम्बू ट्रीज, उसको इतना शार्प छीलते थे कि वो नेजे बन जाते थे, बैम्बू ट्रीज के नेजे बन जाते थे, उन नेजों के जरिए से वो बूबी ट्रैप्स जमीन के ऊपर बना के रखते थे। अब एक फौजी जा रहा है ऊपर देख रहा है दुश्मन को, एकदम से उसका पैर पड़ा, वो जो बूबी ट्रैप था वो ऐसे यूं करके बंद हो जाता था, यानी पूरा पैर जो है ना वो उन छोटे छोटे नेजों के खंजरों के अंदर दब जाता था, वो यानी बेसिकली उसका पैर खत्म हो जाता था उसके बाद। तो बहुत बड़ी तादाद में अमरीकी फौजी जो है वो मारे गए थे उसके अंदर, और बहुत बड़ी तादाद में अपाहज हो गए थे, और जो मारे नहीं गए, जो अपाहिज नहीं हुए, वो मेंटली डिसेबल हो गए थे, ठीक है ना, और बिल्कुल ऐसी उनकी वो कहते हैं वेटरन्स ऑफ वॉर, जब वापस आते थे ना अपने मुल्क में तो वो पागल हो चुके होते थे, ठीक है ना। तो उस जमाने में फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे कि भाई हम क्या कर रहे हैं वहां पे जा करके, हम क्यों जो है वो एक मुल्क के अंदर जा करके उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और इतने हमारे लोग मर भी रहे हैं और हम उनको भी मार रहे हैं, और ये बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए थे, ठीक है। इसी तरह का मामला इन्होंने फिर किया कहाँ पर, अफगानिस्तान के अंदर भी यही किया, ठीक है ना, यही मामला उन्होंने इराक के अंदर भी किया, ठीक है, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए अफगानिस्तान के मौके पर, कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ अमेरिका के अंदर, इराक के मौके पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हुआ अमेरिका के अंदर, ठीक है ना, अब क्यों हो रहा है। हाँ दहशतगर्द कभी यही कॉन्सेप्ट है, अब दहशतगर्द तो वो उसको कहते हैं जो कि जो उसके खिलाफ, अमेरिका वियतनाम वालों को कहेगा दहशतगर्द है, वियतनाम वाले कहेंगे भाई हम तो अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं, हमारे मुल्क में तुम आए हो, हमें क्यों दहशतगर्द कह रहे हो, ठीक है। बहरहाल तो उस वक्त कोई प्रोटेस्ट नहीं हुए, जब इराक में, जब अफगानिस्तान में, अब क्यों प्रोटेस्ट हो रहे हैं गजा के मौके पर, जी क्यों हो रहे हैं भाई, क्यों हो रहे हैं, ज्यादा मुसलमान है अफगानिस्तान और इराक वाले, कम मुसलमान थे जी,
क्यों कर
मजलूम तो उधर भी थे, अब क्यों हो रहे हैं प्रोटेस्ट जी जकरिया भाई, जी मुस्तफा भाई,
रहे
जी ठीक है ना, के दे कॉल्ड सद्दाम एंड तालिबान एस टेररिस्ट, तो अभी भी तो वो टेरर ही बोल करके कर रहे हैं सब कुछ, आपसे ये तवक्को नहीं थी। खैर वो भाई वो जो कुछ कर रहे हैं ना, तो वो उसकी वीडियो बना बना करके सबको दिखा भी रहे, ठीक है ना। जिस जिसको मारते हैं, चाहे बच्चों को मारे चाहे बड़े को मारे, जिसको भी मारे, हर चीज की वीडियो बनती है और फिर वीडियो जो है पूरी दुनिया के अंदर दिखाई जा रही होती है। हर बंदा बशर, चाहे मुसलमान हो चाहे काफिर हो, वो उसको देख रहा होता है, ठीक है। तो जो कुछ भी इस तरह की, जो कोई भी इस तरह की चीजों को देखता है ना, तो उसके अंदर अगर इंसानियत थोड़ी सी भी मौजूद है ना, तो उसका दिल जो है ना फिर वो बहुत परेशान होता है, बहुत फटता है, ठीक है। तो इस वजह से जो है ना वो ये पिछले 7-8 महीने से ये लावा पल रहा था, बन रहा था, बन रहा था, बिल आखिर जो है ना वो अमेरिका के अंदर फटा है। अच्छा फटा भी कैसे है, अभी क्यों आकर के फटा, ये भी किसी को पता है? ये 4 महीने पहले भी तो बहुत सारे लोग मर चुके थे, उस वक्त क्यों नहीं फटा? 6 महीने पहले भी तो बहुत सारे लोग मर चुके थे, उस वक्त क्यों नहीं फटा? वीडियो तो आ रही है मुस्तकिल, इस वक्त क्यों फटा? बड़ों से सवाल है प्लीज।
इलेक्शन
इलेक्शन की वजह से, इलेक्शन तो इंडिया में बनी। इन्होंने कहा ये लोग फट ही नहीं रहे, ठीक है जी।
काफी कुछ जो वैसे अचीव करना तो शायद वो हो गया, और आप कुछ क्लोज करने के लिए कहीं से सीरियल बन के किसी को डालना।
नहीं, अभी फटने की एक बहुत बड़ी वजह है, ठीक है, वो सेवे वे तो बाद में लेकर आएंगे। अभी फटने की जो इतने सारे लोग अभी एकदम से बाहर निकल आए हैं ना, ठीक है ना, उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि इन्होंने, अच्छा तो जल्दी आते अब आ लिया। हर चीज के पीछे अल्लाह, ठीक है, लेकिन तजल्ले आते अफालिया का एक लेसर दर्जा भी है कि हर चीज के पीछे साजिश है, ठीक है, कंस्पिरेसी है, वो भी एक तजल्ली आते अफालिया के एक दुनियावी फॉर्म है। एनीवे तो खैर अभी ये इस वजह से फटा है क्योंकि इन्होंने जब देखा ना कि लोग फट ही नहीं रहे, लोग निकल ही नहीं रहे, लोग आराम यानी थोड़ा बहुत करके चले जाते हैं, इन्होंने कहा यार इनको जो है ना वो कुछ ऐसा बड़ा देना पड़ेगा डोज कि अब इनसे नहीं रहा जाए, ऐसी बड़ी डोज देनी पड़ेगी कि अब इनसे जो है ना वो घर में नहीं बैठा जाए, ठीक है ना। उन्होंने क्या डोज दी, ऐसी डोज, ऐसा उन्होंने कहा कि हम जो है ना इस वक्त एक बहुत बड़ा एड पैकेज अनाउंस करते हैं, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मिलिट्री एड पैकेज अनाउंस कर देते हैं, ये मुर्दा लोग खड़े नहीं होकर के देते हैं। अब जब एड पैकेज उन्होंने अनाउंस किया ना, अब उन्होंने कहा यार बस बहुत होगी, अब हमें उठना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली लोगों को उठाया गया है, ऐसे खामखामी लोग नहीं उठ गए। बहरहाल तो बात क्या हो रही थी कि हाँ, गोरिल्ला वॉरफेयर। तो अब जब मुसलमानों ने यहूदियों को बिल्कुल शिकस्त दे दी और यहूदी जो है वो अब नहीं लड़ने के काबिल रहे ना, तो उन्होंने कहा कि अब हम जो है ना वो साजिशें करेंगे, अब हम जो है ना छुप करके इनके खिलाफ प्लानिंग करेंगे और इनको अंदर से खराब करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो इन्होंने फिर अंदर से खराब करने के लिए जो कोशिश शुरू करी वो ये थी कि इन्होंने एक बनाई मस्जिद, ठीक है, उसका नाम तो जो भी उन्होंने रखा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसका नाम मस्जिद वर्रात रखा, ठीक है, कि ये मस्जिद वरार वरार वाली मस्जिद। बहरहाल तो एक मस्जिद बनाई और उन्होंने फैसला किया कि हम जो है ना वो उस मस्जिद के अंदर बैठ करके जो है ना वो नमाजें भी पढ़ेंगे, लेकिन हम उसको अपना एक प्लानिंग सेंटर बना देंगे, ठीक है ना, सेंटर ऑफ प्लानिंग, वहां पे बैठ करके ना हम साजिश करेंगे, प्लानिंग करेंगे और उन लोगों के खिलाफ जो है वो मुसलमानों के खिलाफ एक्शंस लेंगे, लेकिन ऊपर ऊपर से हम अपने आप को मुसलमान ही साबित करेंगे, ठीक है। अब तक ये जो मुनाफिकीन थे ना, ये मुनाफिकीन ये मस्जिद नबी के अंदर ही आते थे और वहीं पे बैठ करके जो है ना वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे, मुसलमानों से सहाबा कराम से बात करते थे, उनको खराब करने की कोशिश करते थे, उनका जहन खराब करने की कोशिश करते थे, लेकिन वहां पे नबी अलैहिस्सलाम सलाम खुद भी मौजूद होते थे और सहाबा कराम का ईमान भी इतना पक्का था, इतना स्ट्रांग था कि इनकी कोई बात जो है ना वो कामयाब नहीं हो पाती थी, ठीक है ना। तो ये सहाबा कराम को तो बिल्कुल भी खराब नहीं कर सके, नबी अलैहिस्सलाम सलाम के खिलाफ नहीं कर सके, ठीक है ना। तो अब इन्होंने कहा कि अब हम खुद ही जो है ना वो प्लान करेंगे और अपना एक बाकायदा सेंटर बना करके वहां से प्लान करेंगे। तो उसके लिए उन्होंने मस्जिद बनाई। अब इस मस्जिद में लोग क्यों आए भाई नमाज पढ़ने के लिए, ठीक है, तो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को मैसेज भेजा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने जो है ना एक मस्जिद बनाई है जिसके अंदर जो है ना वो करीब के जो ज़ईफ़ लोग होते हैं और बूढ़े लोग होते हैं ना, वो दूर तक मस्जिद नबी चल करके कैसे जाएंगे, तो लोकल जो है वो यहाँ पे एक मस्जिद है इसके अंदर वो लोग आकर के नमाज पढ़ लिया करेंगे, तो आप बराए मेहरबानी हमारी इस मस्जिद में आकर के 2 रकत नमाज अदा कर दें, आपके कदम यहाँ पर आएंगे, रंजा फरमाएंगे, तो उससे बरकत आ जाएगी और सारे मुसलमान जो है ना वो इस मस्जिद की तरफ जो है वो मायल हो जाएंगे। जैसे कि पीर साहब को बुलाया जाता है दुआ करने के लिए, है ना, मदरसा बनाया, पीर साहब आके दुआ कर देते हैं, अब सारे लोग, अच्छा तो पीर साहब ने दुआ करी थी तो अब जो है ना ये मदरसा अच्छा मदरसा कहलाना शुरू हो जाता है। तो इसी तरीके से उन्होंने नबी अलैहिस्सलाम को इन्वाइट किया था उस वक्त जब नबी अलैहिस्सलाम तबूक के लिए नहीं निकले थे। जी
अच्छा
हाँ, इस ये यहूदी था, ठीक है, लेकिन ऊपर से मुसलमान बना हुआ था, यानी ये मुनाफिक था, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि भाई अभी तो मैं जा रहा हूं तबूक के ऊपर, तो जब मैं वापस आऊंगा ना फिर देखेंगे, वी विल सी, यानी वादा नहीं किया कि मैं आकर के ठीक है बाद में आकर के नमाज पढ़ूंगा, हम देखेंगे, ठीक है। तो उस वक्त जो है ना फिर नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वही के जरिए से बता दिया कि ये मुनाफिकीन हैं, ये दीन के दुश्मन हैं और इनकी मस्जिद में आप हरगिज़ जा करके नमाज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। बाकायदा कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह ताला ने फरमाया वल्लज़ीना इत्तखदु मस्जिदन ज़िरारन, और वो लोग जिन्होंने मस्जिद ज़िरार को जो है ना वो पकड़ लिया है, ज़िरारन व कुफ्रन व तफरीकन बैन अल मोमिनीन, ये तो नुकसान पहुंचाने वाली मस्जिद है और कुफर वाली मस्जिद है और मुसलमानों के दरमियान फूट डालने वाली मस्जिद है, यानी इन्होंने इस मकसद के लिए इस मस्जिद को बनाया है, वह इरसादन, और इसके लिए कि ये गोया ना इनके लिए एक एक हमला करने की जगह बन गई है, जैसे कि जब कोई होता है ना शिकारी के मचान के बारे में पता, शिकारी मचान बनाते हैं जो रात को छुप करके शेर का शिकार करने वाले लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं कि शेर से बचने के लिए वो पहाड़, वो सॉरी दरख्त के ऊपर बड़ी सी कोई शाख होती है उसके ऊपर ना अपने लिए बैठने की एक छोटी सी जगह बना लेते हैं, ठीक है ना, क्योंकि नीचे रहेंगे तो फिर शेर उनके ऊपर हमला करेगा और हो सकता है ये उनकी जान खत्म हो जाए, तो ऊपर बैठ करके ना ये बिल्कुल गौर से जो है वो अपनी बंदूक या अपनी तीर कमान लेकर के शेर का इंतजार करते रहते हैं, जैसे ही जो है वो शेर आता है तो उसको फायर करते हैं। अब शेर आता क्यों है, वो इसलिए आता है कि उन्होंने एक बकरी नीचे बांधी हुई होती है या कोई गाय वाय नीचे बांधी हुई होती है, और वो जब शोर मचा रही होती है ना तो शेर को जो है वो दूर से पता चल जाता है कि यहाँ पे एक बकरी है, अब वो उस बकरी को खाने के लिए आता है, तो जैसे ही आता है वो अपने मिरसाद के अंदर बैठे हुए उसको फायर करते हैं और फिर शेर जो है वो मार लेते हैं, ठीक है ना, ये पुराना तरीका है। तो इसको अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में इसका, इन रब्बक लबिल मिरसाद, कि तुम्हारा रब भी जो है ना वो उसी तरीके से तुम्हें गौर से देख रहा है कि जैसे मचान पे बैठा हुआ एक शिकारी जो होता है वो अपने शिकार को गौर से देख रहा होता है कि जैसे ही आएगा मैं उसको शिकार करूंगा, ठीक है ना। तो रब हमें क्यों गौर से देख रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ताला हमें कुछ शिकार करना चाहते हैं, बल्कि अल्लाह ताला हमारी एक एक बात से वाकिफ है, एक एक हरकत से वाकिफ है, वो ऐसा कभी नहीं होता कि अल्लाह ताला हमारी तरफ से गाफिल हो जाए, ठीक है ना, जिस तरह से शिकारी कभी अपने शिकार से गाफिल नहीं होता ना, उसी तरह अल्लाह ताला हमारी तरफ से कभी गाफिल नहीं होते, हम गाफिल हो जाते हैं, अल्लाह ताला गाफिल नहीं होते, ठीक है ना। तो वही लफ्ज अल्लाह ताला ने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया कि ये लोग भी मस्जिद गरार को जो है ना वो शिकारी के मचान के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे मुसलमानों को शिकार करने के लिए, ठीक है। फरमाया लिमन हारब अल्लाह रसूलहू मिन कब्ल, उन लोगों ने यह काम किया जो कि पहले ही अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसलमानों के खिलाफ जो है ना वो जंग में लगे हुए थे। वला यह लिफुन्ना इन अरदना इल्लल हुस्ना, अगरचे कि वो लोग कसमें खा लें कि हमारा तो हमारी नीयत जो है ना वो तो सिर्फ खैर की नीयत है, हुस्ना की यानी बड़ी अच्छी नीयत है, मस्जिद बनाने की, लोग आएंगे नमाज पढ़ेंगे और बेचारे कमजोरों का फायदा हो जाएगा, उनकी कस्मों का अब एतबार नहीं कीजिएगा, ठीक है ना। ये ऐसे लोग जो होते हैं ना ये कस्में खाते हैं लेकिन दे आर नॉट ट्रस्ट वर्दी, वल्लाहु यशहदु इन्नहुम लकाज़िबून, और अल्लाह ताला इस बात का गवाह है कि ये लोग झूठे हैं, मुनाफिकीन झूठे हैं। ला तकुम फीही अबदा, आप कभी भी उस मस्जिद में जाके खड़े मत होइएगा नमाज में, कभी भी उस मस्जिद में जाके नमाज के लिए खड़े नहीं हो जाएगा। और फिर फरमाया ल मस्जिदुन उससे अल तकवा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तकूम फीह, इसके बदले में वो मस्जिद जो कि पहले दिन से तकवा के ऊपर बनाई गई थी ना, उसका हक बनता है कि आप उसमें जाकर के नमाज पढ़े। वो कौन सी मस्जिद थी जो पहले दिन से तकवा के ऊपर बनाई गई थी? मस्जिद कुबा, ठीक है ना। क्योंकि आगे अल्लाह ताला फरमाते हैं फी ही रिजालुन युहिब्बुना अय्यतत्तहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहिरीन, ठीक है ना। ये जो मस्जिद कुबा वाले लोग जो है ना, इसमें ऐसे मर्द होते हैं जो कि पाकीजगी को पसंद करते हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत भी खूब पाक रहने को पसंद करते हैं, मोहब्बत करते हैं खूब पाकी से, ठीक है ना। यत्तहरून, ठीक है, यानी बड़ा एम्फेसिस के साथ जो सीगा इस्तेमाल किया, जो बाब इस्तेमाल किया। तो अल्लाह ताला ने मस्जिद ज़रार का की कंपैरिजन किससे करवाई? मस्जिद कुबा के साथ करके बताई, ठीक है, कि वो मस्जिद थी जो कि तकवा के ऊपर फाउंड की गई थी और ये मस्जिद जो थी ना, ये इनका तो नीयत ही खराब थी। तो फिर इसके ऊपर हमारे उलमा ने फिर फतवा क्या लिखा कि अगर बदनीयती के साथ मस्जिद भी बनाई जाएगी ना अल्लाह की इबादत का काम करने के लिए, लेकिन नीयत खराब थी, तो उस मस्जिद की भी कोई कबूलियत नहीं। ये नहीं कहा जाएगा कि चलो भाई कोई बात नहीं, काम तो अच्छा किया ना, जैसे आजकल कहते हैं ना, काम तो अच्छा कर रहे हैं ना, नियत तो अल्लाह जानता है। तो भाई जब नियत आपके सामने क्लियर हो रही है तो फिर काम के अच्छे होने का आप एतबार नहीं करेंगे, काम के अच्छे होने से तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। इन्होंने बड़ी जबरदस्त यानी फेल किया था मस्जिद बनाने का। अच्छा, तो नबी अलैहिस्सलाम ने इन दोनों सहाबा को भेजा कि आप जा करके मस्जिद ज़रार को जो है ना वो गिरा दें, उनहदम करते हैं, ठीक है, बल्कि उसको जला दें। क्योंकि उस जमाने में मस्जिदें जो बनती थी, अभी जो भी इमारत बनती थी, तो उसके अंदर फिर ना खजूर के पत्ते और छालें और इस किस्म की चीजें भी इस्तेमाल होती थी जिनको के आग लग सकती थी, ठीक है। तो खाली गिराने का हुक्म नहीं दिया बल्कि जला देने का भी हुक्म दिया। तो इन्होंने जाकर के फिर मस्जिद को जो है वो जला दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ना एक और यहूदी था सुएलम, इसने भी जो है ना वो इसी यानी ही वॉज पार्ट ऑफ दिस प्लान। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हु को चंद आदमियों के साथ भेजा कि इसके मकान को भी जला दो जाकर के, ठीक है। उस यहूदी का नाम जो था वो सुहेलम यहूदी था, हमारे मोहल्ले की मस्जिद सुहेलम कहलाती है। तो पता नहीं कोई फैमिली होगी सुहेलम की, तो शायद वो यहूदी उस फैमिली से भी ताल्लुक रखता होगा। खैर, इस यहूदी के मकान को भी जलाने का हुक्म दे दिया। इसके बाद पे नबी अलैहिस्सलाम जो है वो जब मदीना तैयबा की तरफ वाप यानी मजीद आगे बढ़े ना, तो मदीना मुनव्वरा के जब मकानात नजर आने शुरू हो गए, यानी इतना करीब पहुंच गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के मकानात को देख करके फरमाया हाजिही तौबा, हाजिही तौबा, तौ अलिफ बा और दो चश्मी हा, तौबा, ठीक है, यानी ताए मरबूता तौबा। तो मदीना मुनव्वरा का फिर एक नाम जो है वो तौबा भी है। आप ने इस नाम से मदीना मुनव्वरा को, जैसे तैयबा हम लोग कहते हैं, तैयबा कहते हैं, उसी तरह तौबा भी आप मदीना मुनव्वरा के नामों में से है। और इसी मौके के ऊपर वो मशहूर कौल भी आप ने जबले उहद को देख करके फरमाया, कह रहे जबले उहद को देख करके क्या फरमाया, किसी को याद है? उर्दू में ही बेशक, जबले उहद को देख करके क्या फरमाया था?
हाँ
हाँ, मतलब इसी तरह का कॉल फरमाया, हाजा जबलुन युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ठीक है ना। ये पहाड़ है कि जो कि हमसे मोहब्बत करता है और हम इससे मोहब्बत करते हैं, यानी अजीब पहाड़ भी नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत किया करते थे, और जबले उहद जो है ना इसको फिर आप की तरफ से ये सर्टिफिकेट मिल गया कि ये तो पक्का पक्का नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करता है। अच्छा, एक पहाड़ है जो कि मोहब्बत नहीं भी करता,
नहीं।
जब ये गीर जो है ना उसके बारे में फरमाया कि ये हमसे मोहब्बत, ये तो जहन्नुम का पहाड़ है, ठीक है ना। और वो भी मदीना तैयबा के दूसरे एंड पर जब ये गीर भी है, ठीक है, तो वो जहन्नुम का पहाड़ है। बेसिकली साइंटिफिकली अगर आप उसको एक्सप्लेन करें तो वो आतिशफिशा पहाड़ है, ठीक है ना, यानी डोरमेंट आतिशफिशा जो होते हैं ना वो, उसके अंदर ये सारा मामला है। बहरहाल बताने ने बनाया इस तरीके से, क्यों नहीं मोहब्बत करता ये तो उससे पूछ करके बताना पड़ेगा, वो नहीं पूछ सकते। जी,
अच्छा
ओहद का पहाड़ जो है वो जन्नत का पहाड़ भी है, क्योंकि उसको जो है वो जन्नत का हिस्सा भी बना दिया जाएगा। सही है, ये भी हदीस मुबारक से पता चलता है।
तो वहां तक पहुंचे तो उससे आगे भी कर सकते हैं।
हाँ, जबले ईर की मजीद जो है वो दज्जाल के कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी हिस्ट्री आती है कि दज्जाल जो है वो जबले ईर के ऊपर उसका उसका वो जो पैलेस है जबले ईर पर ही है शायद, तो वो वहां तक पहुंचेगा, उसके ऊपर उसका बाकायदा एक महल होगा और सुर्ख ईंटों का बना हुआ महल होगा और उसके अंदर वो रहेगा, आगे जाना चाहेगा लेकिन फरिश्ते उसको आगे जाने से रोक देंगे। अच्छा, तो आप सल्लम ये फरमाया और उसके बाद फिर आप सल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ लाए और वहां पे आकर के 2 रकअत नफिल नमाज अदा करी। मोस्ट लाइकली ये टाइम जो है वही चाश्त वगैरह का टाइम होता था जब नबी अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ लाया करते थे। ठीक है, तो फिर उसके 2 रकअत नमाज पढ़ने के बाद लोगों से थोड़ी बहुत मुलाकात वगैरह करी और फिर अपने घर तशरीफ ले गए, यानी किसी उम्महातुल मोमिनीन के हुजरे के अंदर तशरीफ ले गए। ये आखिरी गजवा था जिसमें नबी अलैहिस्सलाम बनफ्स नफीस खुद शामिल हुए थे, इसके बाद मजीद कोई गजवा नहीं हुआ।
जो इस कबर
कबर मुबारक जिस एग्जैक्ट लोकेशन पर है ना, वो सिर्फ हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा का हुजरा था, लेकिन बाकी जितने हुजरात थे वो उससे मुत्तसिल थे, एडजेसेंट ही थे। सारी उम्मातुल मोमिनीन के जो हुजरे थे ना वो उसी एक जगह पे थे। उसके बाकायदा आप तो मैप्स वगैरह बहुत आसानी से अवेलेबल होते हैं उसके। जी लड़ाई इटसेल्फ नहीं हुई थी, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम उसके अंदर लड़ाई के इरादे से तो निकले थे ना। ठीक है, और थोड़ी बहुत लड़ाई तो हुआ था खालिद बिन वलीद के छोटे ग्रुप ने तो लड़ी, थोड़ी बहुत तो लड़ी थी, एक बंदे को मारा था ज्यादा सारा, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम निकले थे गजबे की नीयत से ही निकले थे, लड़ाई की नीयत से निकले थे। ठीक है, तो अच्छा इसके बाद क्या हुआ, कितना टाइम, थोड़ा सा है अभी। तो अब जो है ना नबी अलैहिस्सलाम घर तशरीफ ले गए आराम वगैरह करके, फिर उसके बाद जब जोहर की नमाज के लिए आए होंगे वहां पे तशरीफ फरमा हुए मस्जिद में आ करके, तो अब जो है ना वो लोग जो के गजवाए तबूक में नहीं शामिल हुए थे, ठीक है, जिनमें से के मेजोरिटी किनकी थी, मुनाफिकीन की थी, तो वो लोग आप सल्लम के पास आना शुरू हुए और अपनी तरफ से ना एक्सक्यूजेस के ये मसला हो गया था, वो मसला हो गया था, झूठ बोलना शुरू किया आप सल्लम के सामने और कहा कि भाई हम इस वजह से नहीं आ सके, हम इस वजह से नहीं आ सके। नबी अलैहिस्सलाम को पता तो था कि भाई ये बंदा भी मुनाफिक है, ये बंदा भी मुनाफिक है, ये बंदा भी मुनाफिक है, तो आप सल्लम ने ना बस सबकी बात हो जाए, जी ठीक, ओके ठीक है ठीक है, इस तरह से ठीक है चलो सही है, जाओ 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 जाओ। ठीक है, आप सल्लम ने किसी को कन्फ्रंट नहीं किया, किसी को कुछ नहीं कहा, तो इस तरह से जो मुनाफिकीन थे वो तो आकर के झूठे झूठे जो है ना वो एक्सक्यूजेस दे करके चले गए। अच्छा, एक और सहाबी का बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है जो तो कि एक्चुअली गजबे से रिलेटेड था, अभी तो वापस आ चुके हैं, वो थे हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, अबू जर गफारी रजी अल्लाह अन्हु का मसला ये हो गया था कि वो गजबे में इब्तिदा में शरीक सिर्फ इस वजह से नहीं हो सके थे क्योंकि उनका जो ऊंट था ना वो बहुत ही कमजोर था और अच्छी उसकी सेहत नहीं थी, तो उन्होंने कहा भाई मैं जरा ठहर जाता हूँ, इसकी सेहत भी अच्छी हो जाए, इसको खिला पिला करके मैं थोड़ा सा मोटा कर लूँ, तो उसके बाद ये जो है ना सफर के काबिल हो जाएगा, तो मैं नबी अलैहिस्सलाम से जा करके मिल लूंगा। लेकिन ऊँट जो है ना उसकी तो तबीयत खराब थी, उसने खा पी करके क्या मोटा होना था, जब तबीयत खराब होती है तो खाना खाने से फिर और पेट खराब हो जाता है, सेहत अच्छी नहीं होती खाना खाने से। तो फिर आखिर ना अबू जर गफारी रतान जो थे वो तो ऐसे आशिक सादिक थे और ऐसे अजीब किस्म के वो तो साहबी थे, उन्होंने कहा मैं पैदल ही निकल रहा हूँ। वो पैदल ही ना अपना सामान उठा करके तबूक की तरफ चलना शुरू हो गए और जज्बा था, जोश था, चलते रहे चलते रहे, हत्ता कि वो जा करके नबी अलैहिस्सलाम से पैदल ही जा करके मिल गए, इतना लंबा रास्ता पैदल उन्होंने तय किया। ठीक है, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जब उनको आते हुए देखा ना तो आप सल्लम ने एक बड़ी अपनी जबरदस्त बात फरमाई कि अल्लाह ताला रहम फरमाए अबू जर के ऊपर, ये अकेला ही चला आ रहा है, फरमाया कि ये अकेला ही मरेगा और अकेला ही उठाया जाएगा। ठीक है, अकेला ही मरेगा और अकेला ही उठाया जाएगा। अच्छा, उठाए तो हम सारे ही अकेले जाएंगे, ठीक है, अबू जर रज़ी अल्लाह खाली अकेले ही नहीं उठाए जाएंगे, लेकिन उसको ज्वाइन कर दिया इस बात से कि ये अकेला ही मरेगा। अकेला मरने से मुराद ये है कि हजरत अबू जर गफारी रज़ी अल्लाह जो थे ना ये बड़े स्पेशल सहाबी इस तरह से थे कि ये हाजा मसीहु हाजिल उम्मा, वो जो थे ना इस उम्मत के मसीह थे गोया के, हजरत ईसा अलैहि सलाम के तरीके के ऊपर वो जिंदा रहते थे। ईसा अलैहि सलाम की सुन्नत ये थी कि ईसा अलैहि सलाम जो है ना बिल्कुल भी जो है ना वो असबाब वगैरह इख्तियार नहीं करते थे, ठीक है ना, वो बस अल्लाह तवक्कुल, अल्लाह ताला दे देगा तो बस हो जाएगा। खाना कोई पहले से कोई अरेंज करने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला देगा खा लेंगे, नहीं देगा तो नहीं, रोजा रख लेंगे, ठीक है। तो एक दफा शायख फरमाते हैं कि वो जो है ना उनके पास बस एक पानी का प्याला होता था, ठीक है, बस वो लेकर के साथ चलते थे कि भाई कहीं पे कुआं होगा तो उसमें से मैं प्याले से पानी निकाल करके पी लूंगा। तो एक जगह जा रहे थे तो उन्होंने कुएं में देखा कि एक बंदा जो है ना वो हाथ से पानी ऐसे निकाल करके पी रहा। उन्होंने कहा अच्छा, इसका मतलब ये प्याले की भी जरूरत नहीं है पानी पीने के लिए, हाथ से भी पानी पिया, उन्होंने प्याला भी फेंक दिया। अब वो बगैर प्याले की जो है वो जा रहे हैं, अब जहां पे अल्लाह ताला पिलाना चाहेगा पानी पी लेंगे। इस किस्म के हजरत ईसा अलैहि सलाम थे, ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने बिल्कुल पहली क्लास हमारी जो थी उसके अंदर हमने ये बात करी थी कि दज्जाल को मारने के लिए ईसा अलैहि सलाम का अल्लाह ताला ने इंतखाब क्यों किया, ठीक है, उसकी वजह क्या बताई थी, किसी को याद है? हाँ, दज्जाल जो है ना वो मादियत मटीरियलिज्म की एक्सट्रीम पर होगा, और ईसा अलैहि सलाम जो थे ना वो एंटी मटीरियलिज्म की एक्सट्रीम पर थे, ठीक है। बाकी नबी जो थे वो असबाब इख्तियार करते थे, हमारे नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है असबाब इख्तियार करना, ठीक है ना। ईसा अलैहिस्सलाम की स्पेशलिटी है कि नहीं नहीं कोई असबाब नहीं, बस असबाब के बगैर ही, ठीक है। तो एनीवे, तो ये जो थे ना अबू जर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो है ये ऐसे ही थे कि बस कुछ नहीं होना चाहिए, कोई जमा करने की जरूरत नहीं है, कोई पैसे कमाने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह देगा खा लेंगे जी, जिंदगी गुजर जाएगी। तो ये जो है ना क्या करते थे कि नबी अलैहिस्सलाम के जमाने में तो फिर आप तो मौजूद थे, तो ये बस जब शेख मौजूद होता है तो फिर ऐसे लोग जो होते हैं ना वो जरा कंट्रोल में रहते हैं। जब शेख दुनिया से चले गए, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है ना वो दूसरे सहाबा को जो जरा नॉर्मल जिंदगी गुजारते थे कि हाँ भाई माल पैसा आया है तो जरा अच्छा सा घर बना लेते हैं, बेहतर घर बना लेते हैं, माल पैसा आया है तो थोड़े से जो है वो खिदमत गुजार लोगों को भी हायर कर लेते हैं, कुछ बिजनेस कर लेते हैं, कुछ ये कर लेते हैं, इन्होंने अब क्या किया, इन्होंने लोगों को टोक टोक ना रोकना शुरू कर दिया, टोकना शुरू कर दिया, ये तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह देगा, अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए, ये तुमने क्या पैसे जमा कर लिए, तुमने अच्छा घर क्यों बना लिया है, तुमने ऐसा क्यों कर लिया, तुमने वैसा क्यों कर लिया, ठीक है ना। तो अब मुसलमानों ने जो है ना वो जा करके खलीफा, जो खलीफातुल मोमिनीन थे उस वक्त हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की खिलाफत थी, तो उनको जाकर के जो है ना वो शिकायतें करनी शुरू करी। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने, क्योंकि उस जमाने में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के जमाने में बहुत माल असबाब मुसलमानों के पास आना शुरू हो गया था, ठीक है ना, इधर से लेकर के इधर तक इस्लामी हुकूमत जो है फैल चुकी थी, खूब माल पैसा आ गया था। तो जायज था, और जायज को जो है वो जायज तरीकों से इस्तेमाल करना ये हमारे दीन में मना नहीं है, लेकिन ये जो है ना सबको टोकते थे। तो उस्मान रतानों से जब लोगों ने शिकायत करी तो उस्मान फरमाया कि भाई अबू जर आप जो है ना वो यानी लोगों के साथ जो है ना वो नहीं रह सकते, आप ऐसा करें मदीना मुनव्वरा से जो है ना वो कहीं बाहर मूव हो जाए, आपका गुजारा नहीं हो सकता लोगों के साथ, ठीक है ना, आप खामखा के जो है ना वो लोगों के लिए एक मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं जिसकी जरूरत नहीं है शरीयत के अंदर। तो अबू जर रज़ी अल्लाह तआला जो है ना फिर उस वक्त मदीना तैयबा से निकल करके एक मकाम था रुबजा, रुबजा या रबजा, वहां पे जाकर के मूव हो गए थे बस अपनी बीवी के साथ, और बिल्कुल तनहा जो है वो अपनी बीवी के साथ वहां पे रहते थे। हत्ता कि जब बीमार हुए तो किसी को पता ही नहीं था कहीं बीमार हो गए, बीवी कैसे, वो फोन का तो जमाना था नहीं, तो बीमार हुए और उसी बीमारी में इनका इंतकाल हो गया। इनकी बीवी ने कहा मैं अकेले बूढ़ी हूं, मैं कैसे इनकी कब्र वगैरह बनाऊंगी, तो उन्होंने ना बस इनके ऊपर चादर वादर जो वही मसहरी पे जिसपे भी बैठे लेटे हुए थे उसी के बस इनके ऊपर चादर डाल दी, अल्लाह से दुआ, अल्लाह बस मैं क्या करूँ, कैसे इनको दफन करूँ, कैसे इनको मैं गुसल दूँ, सब कुछ। तो उस वक्त जो है ना वो अल्लाह ताला ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को वहां पे भेज दिया, वो अपने काफिले के साथ कहीं से वापस आ रहे थे, उन्होंने आकर के देखा कि यहाँ पे कौन, तो अच्छा अबू जर, हमारे आका अलैहिस्सलाम ने उनके बारे में यही फरमाया था, ठीक है ना, कि ये अकेला ही आ रहा है, अकेला ही मरेगा और अकेला ही उठाया जाएगा, ठीक है। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रहता हूँ जो कि साबिकून अव्वलून सहाबा में से हैं, अल्लाह ताला ने उनको भेजा और उन्होंने फिर इनकी नमाज जनाजा पढ़ाई और उनके साथियों ने मिलकर के इनकी तजहीजो तकफीन करी, ठीक है। तो इनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया हुआ तबूक के मौके पर। और दूसरा हजरत अबू खुसैमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी एक सहाबी थे, वो भी जो है ना वो गर्मी की शिद्दत वगैरह की, उन्होंने कहा बहुत गर्मी है चला जाऊंगा बाद में चला जाऊंगा, तो वो नहीं निकले एक साथ लोगों के ना। तो उसके बाद ये किसी दिन घर में बैठे हुए थे, फरमाते हैं कि मैं घर में बैठा हुआ था तो मेरे जो घर वाले थे ना घर की जो बीवी यानी औरत थी बीवी थी जो भी थी, तो उसने जो है ना जरा गर्मी की वजह से पानी का छिड़काव करते थे ये लोग, ठीक है ना, क्योंकि मड हाउसेस होते थे ना, तो मड हाउसेस के अंदर क्या होता है कि जब उनके ऊपर आप पानी डालते हैं ना, तो इवेपोरेशन होती है उस पानी की। इवेपोरेशन से क्या होता है कि पूरा का पूरा घर जो है वो एसी की तरह ठंडा हो जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से मड हाउसेस के अंदर ये लोग पानी के छिड़काव वगैरह करते रहते हैं। तो घर वालों ने जब पानी का छिड़काव किया, उससे थोड़ी ठंडक वगैरह हुई, फिर ठंडा पानी ला करके मेरे सामने रखा और खाना सामने रखा ना, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि अबू यानी खुसैमा, तुम अबू खुसैमा तुम ये क्या कर रहे हो, खैसमा तुम क्या कर रहे हो, नबी अलैहिस्सलाम गर्मी में निकले हुए हैं, खाना भी मुश्किल होगा, जाहिर सफर के अंदर पानी भी मुश्किल होगा, गर्मी की इतनी शिद्दत है और तुम बैठे ठंडे ठंडे ठंडा पानी पी रहे हो बैठ करके। तो उसी वक्त कहते हैं मैं बस उठ खड़ा हुआ, मैंने थोड़े से खजूर अपने साथ पैक किए और मैं निकल खड़ा हुआ नबी अलैहिस्सलाम के पास जाने के लिए। और जब वहां पे मैं पहुंचा तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे देख करके खुशी का इजहार किया और फरमाया कि अबू खैसमा आ रहा है, ठीक है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम को मैंने अपनी वजह वगैरह बता दी, आपसे सुन ने मेरे लिए दुआ फरमा दी, ठीक है। तो ये तो हो गया दोनों का मामला, ये तो तबूक पे पहुंच ही गए दोनों के दोनों। लेकिन तीन सहाबी ऐसे थे जो कि पक्के मोमिन थे, ठीक है, लेकिन वो भी नहीं पहुंच सके, गए ही नहीं वो, ठीक है ना। वो तीन कौन थे? एक तो हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक जो है वो हिलाल बिन उमैया रजी अल्लाह तआला अन्हु, तीसरे कौन थे? मरारा बिन रबिया रजी अल्लाह तआला अन्हु, ठीक है ना। ये तीन भी जो है ना वो किसी ना किसी वजह से नहीं गए, ठीक है। वजह ज्यादा दो की तो ज्यादा वजह कहीं नहीं लिखी हुई है, हमने नहीं देखी लिखी हुई, लेकिन हजरत काब बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु की वजह ये बनी कि बस आज जाता हूँ, कल जाता हूँ, कल चलो फिर कल, अच्छा कल चला जाऊंगा, फिर कल कल चला जाऊंगा, जैसे कल ये मोहम्मद साहब भी कह रहे थे टुमेरो टुमारो नेवर कम्स, कल कभी भी नहीं आती, जब कल चला जाऊंगा ना तो कल हो जाएगी फिर। तो वो तो कहते हैं कि जब आज जाऊंगा तो फिर आज है अभी, तो अभी तो इस वजह से कल कल करने की वजह से सारा मसला पड़ जाता है। तो ये जो है ना फिर बिलाखिर कल कल करते करते जो है वो वक्त गुजर गया और 20 दिन, ज्यादा तो लंबा अरसा नहीं होता, 20 दिन गुजर गया, नबी अलैहिस्सलाम बिलाखिर 21वें दिन वापस पहुंच चुके होंगे। तो अब जो है ना इनको बड़ा रंज हुआ कि ये मैंने क्या कर दिया, मदीना तैयबा के अंदर कोई भी मोमिन नहीं था मेरे अलावा, सवाए उनके जिनको कि नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा स्टेशन किया था किसी काम की वजह से, या जो है वो मुनाफिकीन रह गए थे, या बूढ़े और कमजोर किस्म के, बीमार किस्म के लोग रह गए थे, और मैं तो बड़ा एबल बॉडीड और बड़ा ताकतवर, और मैं जो हूँ वो पीछे रह गया। बड़ा उनको अफसोस हुआ। तो इन्होंने कहा कि मैं जो हूँ ना नबी अलैहिस्सलाम के पास जाऊंगा और मैं अपनी गलती का वहां पे इकरार करूंगा कि मुझसे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, ठीक है। तो ये ना नबी अलैहिस्सलाम के पास खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अच्छा सलाम किया, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो है ना वो इनके सलाम का भी ठीक से जवाब नहीं दिया, ठीक है ना, कोई जैसे कि मुंह फेर लिया। तो उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मुझसे मुंह क्यों फेर रहे हैं, मैं मुनाफिक तो नहीं हो गया हूँ, ठीक है, ना तो मुझे कोई दीन के ऊपर शक हो गया है, ना मैंने दीन इस्लाम को जो है वो छोड़ दिया, यानी ना मैं मुर्तिद हुआ हूँ, ना मैं मुनाफिक हुआ हूँ, ना मुझे कोई शक व शुबा दीन के बारे में हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मुझसे क्यों इस तरीके से कर रहे हैं कि मेरे सलाम का जवाब नहीं दे रहे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा पीछे क्यों रहे थे, क्यों नहीं आए थे तबूक के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने फिर अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर कोई दुनियादार इंसान होता ना तो मैं उसके सामने ना चिकनी चपड़ी बातें बातें करके उसको बेवकूफ़ बना लेता, ठीक है, और उसको जो है ना वो अपने से राजी कर लेता कि हाँ भाई ये वजह बन गई थी और ये मेरा जेन्युइन एक्सक्यूज था और ये हो गया था वो हो गया था, ठीक है, तो मैं आराम से जो है ना वो उसको बेवकूफ़ बना लेता। लेकिन आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, आपके सामने तो मैं बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल सकता, अगर आज मैंने झूठ बोल करके आपको राजी कर भी लिया ना तो अल्लाह ताला कल आपको मेरे बारे में हकीकत बता देंगे और आप मुझसे नाराज हो जाएंगे, इस वजह से मैं आपसे ना बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगा, बल्कि हकीकत यही है कि मैं सुस्ती और काहली की वजह से जो है ना वो पीछे रह गया, ये मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बस उम्मीद है कि आप और आपका खुदा जो है यानी अल्लाह ताला जो है वो हमें मुझे माफ कर देगा, ठीक है। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हाँ इसने ये बात तो सच कही, ठीक है, तो लेकिन अभी जो है ना मैं इसके बारे में कोई फैसला नहीं करूंगा बल्कि अल्लाह के हुक्म का इंतजार करूंगा जो अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा इसके बारे में भी। और यही चीज जो है वो हिलाल बिन बिन उमैया और मरारा बिन रबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने भी यही काम किया, सच सच आकर के बता दिया। तो नबी अलैहि सल्लम फरमाया कि इन तीनों को जो है ना वो हम कंप्लीट सोशल बायकॉट करेंगे, ठीक है, यानी इनके साथ कोई बात नहीं करेगा, इनके साथ कोई मुलाकात नहीं करेगा, कोई दोस्ती कुछ किसी किस्म का कोई काम नहीं होगा, ठीक है, इसको कहते हैं सोशल बायकॉट कर देना। तो अब जो है वो ये लोग जो है वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में भी आते थे, लेकिन कोई इनसे बात नहीं करता, ठीक है। जाहिर है अपने दोस्तों के साथ यारों के साथ जब ये मामला हो जाए तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। आपके भी दोस्त हैं जिनके साथ आप खेलते हैं और जिनके साथ आप हंसी मजाक करते हैं, जिनके साथ आपकी बातें होती हैं, वो अगर आपके साथ इस तरीके से बॉयकॉट कर दें ना तो ये बहुत मुश्किल हो जाता है मामला, ठीक है। अच्छा, चंद दिन तक तो ये ऐसे चलता रहा, फिर उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये भी हुक्म फरमा दिया कि इनसे कह दीजिए कि ये अपने अपनी बीवियों को भी कह दें कि वो भी चले जाएं इनको छोड़ करके, बीवी से भी बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो काब बिन मालिक रहता ना, उन्होंने अपनी बीवी को कह दिया भी ठीक है तुम अपने वालदैन के पास चले जाओ, ठीक है। हिलाल बिन उमैया और जो दूसरे थे ना, नाम भूल जाता हूँ बार बार, मरारा बिन रबी, ये थोड़े से बूढ़े भी हो चुके थे, इतने बूढ़े नहीं हुए थे कि जिहाद से एक्सक्यूज हो जाए, लेकिन इनकी ज्यादा उम्र हो चुकी थी। तो इन्होंने फिर रिक्वेस्ट भेजी नबी अलैहि सलाम के पास कि हम बहुत बूढ़े हो गए हैं और बीवी के बगैर जो है ना वो हमारा गुजारा नहीं चल सकेगा, घर के काम काज और जो जरूरियात हैं वो नहीं हो सकेंगी, तो हमें अगर आप एक्सक्यूज कर दें, तो नबी अलैहि सलाम ने उनको एक्सक्यूज कर दिया कि ठीक है तुम बीवियां तुम्हारे साथ ही रहें लेकिन बातचीत ना करें, ठीक है ना। तो अब इतना ज्यादा मुश्किल मामला हो गया, किसी के पास जाकर के बात करने की कोशिश भी करते थे ना तो आगे से वो बिल्कुल कोई जवाब नहीं देते, ठीक है। इसके ऊपर फरमाते हैं कि एक बहुत बड़ी आजमाइश एक और आ गई मेरे ऊपर, वो ये कि ये जो खबर थी ना कि नबी अलैहिस्सलाम ने मेरा बायकॉट कर दिया है, ये खबर जो है वो फैलते फैलते मदीना मुनव्वरा से बाहर जो जो काफिर जगह थी ना वहां तक ये खबर भी पहुंच गई। तो एक काफिर बादशाह था कोई उस जमाने में किसी जगह का, शाम वगैरह का था, तो उसको जब ये खबर मिली ना तो उसने बाकायदा एक खत लिख करके मेरे नाम भेजा कि सुना है कि तुम्हारे साहिब ने ना तुम्हें इस तरीके से रिजेक्ट कर दिया है, तो तुम ऐसा करो हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें बड़ी इज्जत देंगे, हम तुम्हें बड़ा मुकाम देंगे, मर्तबा देंगे, ठीक है। तो काब बिन मालिक रतन फरमाते हैं कि जब मैंने वो काफिर बादशाह का खत पढ़ा ना, मैंने सोचा अच्छा अब मैं इतना गिर गया हूं, इतना बुरा हो गया हूं कि काफिरों को मुझसे उम्मीद लग गई है, कि काफिर मुझे इनवाइट करना शुरू हो गए अपनी तरफ, उनको बहुत गुस्सा आया, उन्होंने उसका खत ही फाड़ दिया, ठीक है, इतना गुस्सा आया खत ही फाड़ दिया। बहरहाल ये टाइम इस तरह से गुजरता रहा और पूरे 50 दिन गुजर गए, 50 days, ठीक है। तो उस वक्त ये 50 दिन जब गुजर गए तो ये अपने घर में बैठे हुए थे, तो इतने में ना उनको जबले सुलह से जो है ना वो एक किसी आदमी की आवाज आई जो जबले सुलह के ऊपर खड़ा हुआ, वहां से उनको पुकार रहा था, या काब इब्ने मालिक, या काब इब्ने मालिक, अबशर, खुश हो जाओ, खुशखबरी मैं तुम्हें सुनाता हूँ, अबशर, ठीक है। तो जब इन्होंने सुना ना, इनको लग पता गया कि हाँ अब जो है ना वो लगता है कि अल्लाह ताला की तरफ से तौबा कबूल हो चुकी है, तो ये उसी वक्त सजदे में गिर गए और वो जो थे ना जिन्होंने पुकारा था, तो हुआ ये था जो कि हमने दूसरी जगहों पे मशाइख से सुना वगैरह कि दो सहाबा जो थे ना वो निकले इनकी तरफ दौड़ने के लिए, ठीक है। तो अब दोनों ने कहा कि भाई पहले मैं जाकर खुशखबरी सुनाऊंगा, दूसरे ने कहा नहीं पहले मैं जाकर खुशखबरी सुनाऊंगा, तो उन्होंने कहा अच्छा तो मैं ऐसा करता हूँ मैं जबले सुलह पे चढ़ करके उसको जोर से आवाज देता हूँ, खुशखबरी ऐसी पहुंच जाएगी, तुम भाग करके पहुंच जाओ, लेकिन मैं है ना आवाज की जो स्पीड ऑफ साउंड होती है वो ज्यादा तेज होती है बंदे की स्पीड से, तो उन्होंने खड़े होकर के जोर से आवाज दी, इनको खुशखबरी उन्होंने पहले सुना दी। यानी अपने भाई को जो ईमानी भाई थे, कोई बायोलॉजिकल रिलेशनशिप तो नहीं थी ये, तो फकत ईमान की खातिर ये रिलेशनशिप थी ना, तो उनको खुशखबरी सुनाना, उनको मुसीबत से निकालने के लिए कितना एक दूसरे से सबकत ले जाने की कोशिश करते थे, ठीक है। तो वो जो खुशखबरी सुनाने वाले थे, फिर मशायख ने फरमाया कि वो कौन थे, वो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, ठीक है। तो इन्होंने फरमाया कि मैंने जो खुशखबरी सुनाने वाला था ना तो उसको ना अपने कपड़े जो है वो हदिये में दे दिए, खुश होकर के कोई ना कोई हदिया देते थे, ये एक सुन्नत भी है और अरब की ये ट्रेडिशन है, तो उन्होंने ना अपने कपड़े ही उनको हदिये में दे दिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो है ये जब मस्जिद नबी में पहुंचे तो वहां पर सबसे पहले जो है वो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, ये खड़े हुए सफों में से और आकर के इनसे मुसाफिहा किया, ठीक है, तो कहते हैं कि मैं तलहा के ना इस एहसान को कभी भी नहीं भूलूंगा, कोई दूसरा खड़ा नहीं हुआ, तलहा खड़े होकर के मेरे सामने आ गया, मैंने उससे मुसाफिया किया। ठीक है, तो तलहा रजान के बारे में भी बड़े खुश हुए, और फिर उसके बाद जो है वो सारे लोग जो है वो इनको मुबारकबाद देना शुरू हो गए और कहने लगे लतहनुका तौबतल्लाहि अलैक मुबारकुन, ठीक है, कि तुम्हें जो है ना अल्लाह ताला की तौबा, अल्लाह ताला की तौबा, तौबा तो इन्होंने करी थी, अल्लाह ताला की तौबा का मतलब क्या होता है? अच्छा, पहले अल्लाह ताला की तौबा का मतलब क्या होता है? अल्लाह ताला ने तौबा करी।
अच्छा
हाँ, अल्लाह ताला के लिए जब तौबा का लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है ना, इसका मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने बंदे की तौबा को कबूल कर लिया, या अल्लाह ताला ने बंदे की तरफ तवज्जो करी, मुतवज्जा हो गया अल्लाह ताला। ठीक है, हम जब तौबा करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हमने अपने गुनाहों से जो है वो तौबा करी, गलती से तौबा करी। ठीक है, तो इस तरह से इनकी तौबा का मामला जो है वो मुकम्मल हुआ। फिर उसके बाद ये नबी अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ लाए, आपसे फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस तौबा के शुक्रिया में अपना सारा का सारा माल खैरात कर देना चाहता हूँ। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि नहीं, कुछ तुम अपने फैमिली वालों के लिए रहने दो, सारा का सारा खैरात ना करो। ठीक है ना, ये बात कही नहीं, लेकिन समझाने की खातिर कि भाई तुम अबू बकर सिद्दीक नहीं हो। ठीक है, अबू बकर सिद्दीक जो है ना, वो सारा का सारा माल भी अगर दे दें ना, सब कुछ भी दे दें, उनको कुछ नहीं होने वाला। ठीक है, लेकिन तुम उस दर्जे के ऊपर नहीं हो, तुम सारा का सारा नहीं दो, वरना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो उनसे जो है ना फिर सारा कबूल नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है ना खैबर में जो मेरा हिस्सा मिला था ना मुझे, वो मैंने रख लिया, और बाकी सब कुछ जो है वो खैरात कर दिया। ठीक है, इस मौके के ऊपर अल्लाह ताला ने जो आयात नाजिल फरमाई, वो अनदर प्रूफ के सहाबा कराम से अल्लाह ताला को कितनी मोहब्बत है, सहाबा कराम से अल्लाह को कितनी मोहब्बत है। इनकी तौबा के ऊपर फरमाते हैं, लकद ताब अल्लाहु अला नबी वल मुहाजरीन वल अंसार। ठीक है ना, तहकीक के अल्लाह ताला ने रुजू किया, अल्लाह ताला ने जो है ना वो मुतवज्जे हुए किनकी तरफ? नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ फरमा रहे हैं मुहाजरीन और अंसार की तरफ। ठीक है ना, ये कौन लोग होते हैं? ये सहाबा का नाम होता है ना, मुहाजरीन और अंसार। ठीक है, बाद के मुसलमान तो ना मुहाजरीन में आएंगे ना अंसार में आएंगे। ठीक है ना, वो तो औलादों में आएंगे, असल मुहाजरीन अंसार तो वो थे जो कि जमाने के सहाबा कराम थे। तो अल्लाह ताला उनकी तरफ मुतवज्जे होते हैं नबी के साथ, और उनके बारे में अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लजीना अल्लजीना तबउहु फी साअतिल उसरते। ठीक है, कि जिन्होंने जो है ना वो नबी अलैहिस्सलाम की इत्तबा करी मुश्किल हालात में, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मुश्किल हालात पड़े थे, तो इन लोगों ने उस मौके पर नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करी, इत्तबा करी, उनका साथ दिया। ठीक है, तो कुरान मजीद से सहाबा कराम के बारे में इतनी दलायल मौजूद हैं कि कोई भी सही अकल रखने वाला शख्स जो है ना, वो सहाबा कराम की बुराई कर ही नहीं सकता। तो जो करता है वो या तो उसकी अकल खराब होती है, या उसका जो है ना वो नीयत खराब होती है। दो ही चीजें खराब हो सकती हैं, या तो अकल खराब या दिल खराब। ठीक है, फिर उसके बाद इनके बारे में फरमाया कि और अल्लाह ताला ने जो है ना वो ये जो रुजू किया ना, वा अला सलासती अल्लदीना खुल्लिफू, ये जो तीन पीछे रह गए थे ना, उनकी तरफ भी अल्लाह ताला मुतवज्जे हो गए। ठीक है, हत्ता इजा वाकत अलैहिम अर्दु बिमा रहबत वा वाकत अलैहिम अनफुसुहुम, यानी ये इनके ऊपर जमीन तंग हो गई थी, जब सारे इनके दोस्तों ने, इनके साथियों ने, इनके रिश्तेदारों ने इनसे बातचीत करनी बंद कर दी ना, तो गोया के घुटन हो गई थी इनके ऊपर, जमीन घुट गई थी, तंग हो गई थी इनके ऊपर। ठीक है ना, अगरचे कि जमीन तो इतनी वसी है, कितने सर्कमफ्रेंस कितना होता है जमीन का, साइंस क्लास में कभी पढ़ा था? कितने? 25,000 miles, है ना, 6 किलोमीटर्स था, इतना बड़ा सर्कमफ्रेंस है जमीन का। ठीक है, लेकिन इतने बड़े होने के बावजूद इनके ऊपर जमीन तंग हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि इनके पास जाने के लिए कोई जगह ही नहीं है। ठीक है, तो उस वक्त जो है ना अल्लाह ताला ने इनकी तरफ रुजू किया। तो इसके ऊपर फिर मुफस्सरीन ने फरमाया कि ये जो तीन हजरात थे ना, तो इनके लिए ये दिन जो था ना, जब ये आयात नाजिल हुई, ये दिन इनके ईमान लाने वाले दिन से भी ज्यादा कीमती दिन था। ठीक है, ईमान लाने वाले दिन से भी ज्यादा अहम और कीमती दिन ये दिन था जब अल्लाह ताला की तरफ से ये आयात इनके लिए नाजिल हुई। क्यों? इसलिए कि जब ये ईमान लेकर के आए थे तो ठीक है, ये ईमान लेकर के आ गए और इनका शुमार जो है वो सहाबा में हो गया, इनका शुमार जो है ईमान वालों में हो गया, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से एक्सप्लिसिटली इनके लिए तो कोई सर्टिफिकेट नहीं उतरा ना, पूरी जमात के लिए सर्टिफिकेट उतरा, लेकिन इस मौके के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से खास इन तीन हजरात के लिए अल्लाह ताला ने इनके ईमान की गवाही दे दी कि अल्लाह ताला इनकी तरफ मुतवज्जो हो गया, जैसे अल्लाह ताला जो है वो नबी और मुहाजरीन और अंसार की तरफ मुतवज्जो हुआ था जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के साथ दिया, उसी तरह इन तीनों की तरफ भी साथ साथ मुतवज्जो हो गया। ठीक है, तो इनको जो है ना फिर अल्लाह ताला ने, देखें इनसे तो गलती हो गई थी, लेकिन गलती के ऊपर जो इन्होंने तौबा करी है ना, तो इस तौबा के ऊपर अल्लाह ताला ने इनको एक ऐसा मुकाम अता फरमा दिया जो कि गलती से पहले इनके पास नहीं था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम पहले गलती करें तो उसके बाद तौबा करें फिर हम जो है वो ज्यादा पहले पहले से भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे, नहीं, गलती करने के बाद, क्योंकि जिंदगी मौत का कुछ पता नहीं और ये भी नहीं पता कि शैतान उसके बाद तौबा करने भी देगा कि नहीं करने देगा, इसलिए गलती करने की तो बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं होती। लेकिन मकसद ये है बताने का कि अल्लाह ताला इतने रहीम है, इतने करीम है कि गुनाह करने वाले को या गलती करने वाले को तौबा के ऊपर जो है ना वो उसके पहले जो उसका मुकाम था उससे भी ज्यादा ऊंचा मुकाम अता फरमाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ तक जो है वो गज़वे तबूक के बारे में बात मुकम्मल हुई। अब जो है वो इस साल यानी 9th हिजरी के अंदर और जो कुछ वाकया पेश आए थे वो अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे। किसी के पास कोई सवाल है या कोई कमेंट है तो वो अभी पूछ लीजिए। आपका गालबन सवाल था, ओहो 15 मिनट, कोई सवाल था रह गया?
स्ट्रिक्टनेस
स्ट्रिक्टनेस, इतनी स्ट्रिक्टनेस इस गजबे के अंदर क्यों की थी? स्ट्रिक्टनेस का जो लफ्ज है वो तो ना मुनासिब नहीं लगता इसके लिए, लेकिन इस गजबे में और दूसरे गजबों के अंदर कुछ फर्क भी थे, जैसे कि शुरू में हमने बात करी थी कि ये जो वक्त था ना साल का वक्त, ये इंतहाई मुश्किल वक्त था। एक तो गर्मी जो है वो अपनी शिद्दत के ऊपर थी, दूसरा कहत वगैरह का सिलसिला भी चल रहा था, और खजूर के पकने से जो है ना वो कहत और तंगदस्ती जो थी वो दूर हो जानी थी। जैसे कि हर साल ये टाइम आता है सख्त गर्मी में खजूर पकते हैं, ठीक है ना, लेकिन सबको पता होता है कि जब पकेंगे खजूर तो उसके बाद जब हम उसको सेल ऑफ करेंगे तो हमारी ये सारी की सारी मसला हल भी हो जाएगा। ठीक है, तो उस मौके के ऊपर जो है ना वो सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकल जाना अल्लाह के रास्ते में। ठीक है, अब 20 दिन तो बाद में पता चले ना कि 20 दिन में वापस आ गए, पहले तो कुछ पता नहीं था भाई, 2 महीने में वापस आएंगे, 10 महीने में वापस आएंगे, पता चला वापस ही नहीं आए, है ना। 40,000 का लश्कर रोमियो का स्टैंडिंग आर्मी जो है वो उससे लड़ने के लिए जा रहे हैं, छोटे मोटे किसी कबीले से थोड़ी लड़ने के लिए जा रहे हैं। तो जिहाद में निकल जाना जो है ना ये आसान काम वैसे भी नहीं होता था, लेकिन इस मौके के ऊपर जो है ना वो बहुत एडिशनल फैक्टर्स भी जो है ना वो इसके रास्ते में रुकावट बन करके आ गए थे। तो इस वजह से जो है ना वो बात समझ में आती है कि जो 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 एम्फेसिस था ना वो भी नबी अलैहिस्सलाम की तरफ से ज्यादा था पहले मुकदमों के मुकाबले में। पहले भी जाहिर इस तरह के हालात होते थे लेकिन इस तरह के फैक्टर्स उसके अंदर शामिल नहीं होते थे। बहरहाल चलो, आप अलहमदुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आपके आप लोगों की फिका की क्लास थोड़ी सी